ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद आज दोपहर स्वदेश लौट आए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने संबंधों को और बेहतर बनाकर सामरिक भागीदारी करने का निर्णय लिया। उन्होंने और अधिक स्थायी, समृद्ध और सतत विश्व के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्ष सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच कीव में शिष्टमंडल स्तर की बैठक हुई। बैठक के दौरान यूक्रेन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, औषध नियंत्रण मानकों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस को संघर्ष का समाधान तलाशना चाहिए। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि शांति स्थापित करने के किसी भी प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। नेपाल के तनहुन जिले में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों और घायलों को भारत लाने के कार्य की निगरानी के लिए युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास के अनुसार इस दुर्घटना में 27 भारतीयों ने जान गंवाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री खड़से ने कहा कि उन्होंने काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृधु ढुंगाना के साथ बचाव अभियान और आगे की कार्रवाई के बारे में चर्चा की। काठमांडू में भारतीय दूतावास घायलों के उपचार और मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन के लगातार संपर्क में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर भारतीय वायुसेना का विमान बस दुर्घटना में मारे गए महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के शव भारत लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटजन परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रूपये मिलेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि उनका मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा, कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कल महाराष्ट्र के पवई में समुद्री प्रशिक्षण संस्थान एमटीआई में वरिष्ठ अधिकारियों और युवा कैडेटों को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने इस दिशा में सरकार के कदमों और पहलों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को शीर्ष 10 समुद्री राष्ट्रों में शामिल करना चाहती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि विश्व अब समुद्री क्षेत्र में हमारे देश की प्रवीणता की ओर आकर्षित हो रहा है और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की बेहतर होती रैंकिंग इसका प्रमाण है। स्पेस जोन इंडिया ने माचिन समूह के सहयोग से भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का चेन्नई से प्रक्षेपण किया है। 50 पीको उपग्रह और 3 क्यूब उपग्रहों को लेकर गए इस रॉकेट को मोबाइल ट्रेजेक्ट्री के इस्तेमाल कर प्रक्षेपित किया गया था। इस रॉकेट ने लगभग 35 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी और ये कई प्रयोग करने के बाद कुछ ही क्षणों के भीतर पृथ्वी पर वापस लौट आया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बहुउद्देशीय MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए 5,28,00,000 डॉलर की अनुमानित लागत से भारत को पनडुब्बी रोधी सोनोबोएस युद्धक प्रणाली और संबंधित उपकरणों की भारत को संभावित बिक्री की स्वीकृति दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी कर अमरीकी कांग्रेस को इस संभावित बिक्री के बारे में अधिसूचित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।